नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और कार्यक्रम का विषय हम आपको बता चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें भी खुल चुकी हैं। नंबर आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलय नीरव, वरिष्ठ खेल पत्रकार, बहुत तमाम टीवी चैनलों से आपको देखने के बाद स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद मोहनलाल।
आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक उदाहरण मैं लूँ कि माइकल फेलिप्स ने जितने पदक जीते उतने भारत अब तक ओलंपिक के इतिहास में नहीं जीत पाया। अगर पदक तालिका पर आज की नज़र डालें तो छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो भी एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, चार कांस्य पदक लेकर अपने वरीयता सूची में कहीं ऊपर हैं, और भारत 125 करोड़ की आबादी में दो पदक, एक रजत और एक कांस्य। चुनौती ओलंपिक में चित्त क्यों, मलय साहब?
चुनौती चित हुई कि नहीं हुई, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूं, और न जनसंख्या होना इस बात का कोई द्योतक है कि आप ओलंपिक में पदक जीतेंगे। भारत में ये बताइए कि खेलों की संस्कृति कितनी विकसित है, ये बताइए कि क्या आपने बचपन में ये कहानी, ये गाने नहीं सुने थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्या आपने ये बातें नहीं सुनी थी कि जिस बच्ची को जन्म होने से पहले ही हरियाणा में मार दिया जाता है, उस बच्ची उसी हरियाणा में जब महावीर सिंह ने अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाने की कोशिश की तो उसके बाद कितने ताने बाने उनको सुनने पड़े। आज हम कह रहे हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, और ये भारत की जो संस्कृति है, जो परम्परा है, उसमें बदलाव का एक चिन्ह है। आज हम एक ऐसे मोड़ पे, चौराहे पे खड़े हैं, दोराहे पे भी नहीं, जहां हमें ये देखना होगा कि हम क्या एक खेलों की संस्कृति के विकास में अपने यहाँ जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, जो धर्म है, धर्म पर आधारित जो सामुदायिक विभाजन है, जो बच्चियां हैं और बच्चों में जो हम भेदभाव करते हैं, इन सब को भूल कर अगर हम ओलंपिक में पदक जीतना चाहते हैं तो फिर हमें खेलों की संस्कृति का विकास करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ ओलंपिक आने और जाने पर चर्चा करने से बीबीसी के स्टूडियो में बैठकर कुछ नहीं होने वाला।
जाहिद खान है जो कि फेसबुक पर एक टिप्पणी करते हैं कि इसमें जिम्मेदार सरकार के साथ साथ देश की आम जनता भी है, और एक सवाल ये भी है कि सरकार हमारी खेलों को क्यों बढ़ावा नहीं देती। अगर हम खेलों की संस्कृति बदलना चाहते हैं तो सरकार को भी आगे आना चाहिए, और सरकार वो कर रही है। आज आप देखिए कि इनको कितने पदक जीतने के बाद कितने रुपए मिलते हैं।
देखिए, सरकार करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, अब इसमें कोई विवाद नहीं है। सरकार करना चाहती है, करती भी है, पैसा आता भी है, मगर ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। जो खिलाड़ी है वो सबसे निम्नतम प्राथमिकता पर उसको रखा जाता है।
खिलाड़ी क्या आप ये संदर्भ में कह रहे हैं कि जो भारतीय दल है, डेलीगेशन है, उसमें अधिकारी भी हैं और इतना लंबा चौड़ा डेलीगेशन गया?
नहीं, सिर्फ गया नहीं, जब आपकी एक धाविका जाने के दो हफ्ते पहले तक ये सोचती रहती है कि कोई एक पैसे वाला व्यक्ति उसके जूते खरीद के दे दे, और उसको आप जब 23-23, 24-24, 26-26 घंटे की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कराते हो और आप खुद वहाँ बिजनेस क्लास में जाते हैं, तो कम से कम शर्म तो आपको आनी ही चाहिए।
जी, मैं आज अगर देश
शर्मिंदा है, आपको भी शर्म आनी चाहिए।
मैं आपको रोक रहा हूँ, एक श्रोता है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो,
हेलो सर।
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
मेरा नाम अकरम सर, मैं मैसूर सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ।
अच्छा अकरम साहब, सीतामढ़ी बिहार से कार्यक्रम में स्वागत है, अपनी बात रखें आप।
जी सर, मैं सबसे पहले तो उन दो बेटियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वो एक उन दोनों बेटियों का, उनके गार्जियन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और कोच को भी। और मुझे ये कहना है कि बाकी सरकार इतना रुपया खर्च करती है आने जाने में, खाने पीने में, लेकिन जो भी बोल रहे थे हमारे एक प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, बोले जूता खरीदने तक के लिए खिलाड़ी को पैसा नहीं है, तो बताइए इतना पैसा खर्च दे सकते हैं क्या पास, जबकि उनको न ड्रेस मिल रहा है न जूता मिल रहा है, ये अरबों रुपया खर्च करने से फायदा क्या है, उनको हर चीज पर खर्च करना चाहिए। और हाँ, बेटियों ने जो सम्मान दिया है भारत को, बेटियों से मैं उम्मीद करता हूँ, जो कुछ लोग है योगेश्वर दत्त जी का भी प्रोग्राम बाकी है खेल, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ वो कम से कम सोना जीते ताकि देश का नाम रोशन हो। और मैं देश के सभी बेटियों को मुबारकबाद देता हूँ कि सब बेटी इसी तरह अपने देश का नाम रोशन करे। राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ वो खेल को राजनीति से दूर रखे और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ईमानदारी से खेलों में भेजे, कोई पर भी न सुने, जो अच्छा खिलाड़ी उसी को भेजे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब। एक श्रोता और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, दिलावर खान साहब शामिल हो चुके हैं। दिलावर साहब
जी, सर
जी अपनी बात रखें आप, और ये जो पीछे आपने रेडियो चला रखा है इसको थोड़ा सा बंद कर दें।
नहीं सर, बिल्कुल बंद है रेडियो।
जी
सर,
जी जी जी
सर, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी ओलंपिक टीम हो चाहे दूसरी भी टीम हो, अगर हमारी बहनों को मौका दिया जाएगा तो हिंदुस्तान के ताज सुशोभित होगा।
अगर अगर किसको मौका दिया जाए,
बहनों को,
अच्छा बहनों को मौका
दिया जाए हमारे,
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप।
जी सर
जी,
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कलम के क्षेत्र में हो, चाहे तलवार के क्षेत्र में हो, चाहे बंदूक के क्षेत्र में हो सर, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, जो मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिलता है। इसलिए किसी ने कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है, फातिनों में नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मले साहब, हीरा कुमार सिंह हमारे एक फेसबुक पर उन्होंने टिप्पणी की है, जब तक चयनकर्ताओं द्वारा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की जगह अपने लोगों को पिकनिक के तौर पर विदेश भ्रमण के लिए चुना जाता रहेगा, तब तक एक आध ही सही चयनितों के बल पर एक आध मेडल मिलते ही रहेंगे आपको।
बात पूरी तरह से गलत नहीं है, काफ़ी सच्चाई है इस बात में। एक उदाहरण से इनकी बात को सिद्ध करता हूँ। आज जो डॉक्टर वहाँ गए हैं पवनदीप जी, वो भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के बेटे हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सरे करता है, एमआरआई स्कैन करता है, उसका जो विश्लेषण करता है उसके डॉक्टर हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में उनको क्या जानकारी है, ये सिर्फ वो जानते हैं या उनके पिता जानते हैं?
लेकिन ये तो भारतीय संघों के साथ
चीज नहीं, इस तरह की चीज़ जब इस तरह के लोग आप जाते हैं बारात में लेकर अपने साथ, और एक इसका काउंटर उदाहरण देखिए, किसी को ये बात पता नहीं है कि मीराबाई चानू नाम की एक लड़की है वेटलिफ्टर, जिसको इस बार ओलंपिक में जगह मिली थी क्योंकि उसने 195 किलोग्राम वजन उठाया था। वो उसकी जो मेंटर जिसकी है थी, वो उसकी जो मेंटर थी कुंज रानी देवी, आपने नाम सुना होगा। कुंज रानी देवी ने खून पसीना बहाया उसके साथ, रात दिन उसके साथ मेहनत की, और कुंज रानी देवी नहीं गई उसके साथ कोच के रूप में, एक नए व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि ये उम्मीद थी कि ये लड़की वहां जाकर जब पदक जीतेगी तो कोच का बिल्ला जिसके माथे पर चिपका दिया गया है, योगेश कुमार शर्मा उसका नाम है शायद, वो उसको कुछ धनराशि बड़ी मिल जाएगी। वो व्यक्ति वहां जाता है स्नैच में, 104 किलोग्राम का वजन, ये तो आप ही समझिएगा मोहनलाल जी, आपने तो थोड़ा बहुत खेल कवर किया है, कि जब 104 किलोग्राम का वजन उठाने को कहा गया तो वो लड़की नहीं उठा पाई स्नैच में, तो जब 104 नहीं उठा पाते हैं तो उसको 102 देते हैं, 103 देते हैं, दूसरे में उसको 106 दे दिया, कोच ने कहा कि अगर इसने 104 नहीं उठाया तो 106 दे दो, और उसकी कोच जो है जिसने उसको बच्ची की तरह पाला है वो यहाँ बैठी खून के आंसू रो रही थी, वो नहीं थी
कुंज रानी देवी।
और पवनदीप सिंह जी वहाँ, सभी एथलीट उनको कॉम्बी फ्लाम कहते हैं, क्योंकि किसी को कोई बीमारी होती है, कोई दर्द होता है तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप कॉम्बी फ्लाम खा लो,
जो कि पैरासिटामोल और ब्रूफेन का कॉम्बिनेशन है। मले साहब, यहाँ पर हम रियो चल रहे हैं और खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नॉरिस जी, आज हम बहस कर रहे हैं भारत के प्रदर्शन पर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि दो पदक तो भारत की झोली में आ गए, अब तक भारत को क्या क्या निराशा मिली और जो सफलता मिली वो तो हम जानते हैं, अब किस पे निगाहें टिकी हुई हैं?
बस मेरे ख्याल है अब योगेश्वर पे थोड़ी बहुत उम्मीद है, बाकी क्योंकि आज अभी महिलाओं का गोल्फ चल रहा है जिसमें बिल्कुल पिछड़ी में कोई चांस नहीं है, सिर्फ योगेश्वर की थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन योगेश्वर भी देखिए 3 साल से घुटने की चोट को लेके परेशान है, कभी बाहर भी उनको हर जगह भेजते हैं लेकिन वो कहीं कम्पीट नहीं करते। तो यहाँ भी अगर कम्पीट भी भाग भी ले लिया उन्होंने तो हम सोचें कि गोल्ड ले आएंगे या कुछ होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत ही मुश्किल है।
तो कुल मिलाकर भारत का प्रदर्शन अब तो सिर्फ एक दिन बचा हुआ है रियो ओलंपिक खत्म होने में, भारत का प्रदर्शन कैसे आंकते हैं आप?
क्या मतलब बार बार ये कहते हुए बड़ा बुरा लगता है कि बहुत ही खराब प्रदर्शन है, पिछले 15 दिन से हम यही बोले जा रहे हैं और यही चलता रहेगा, और आने के बाद मेरा ख्याल है ज्यादा इस पे बहस होगी, चर्चा होगी, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जाएंगे कि क्या इतना पैसा देना ठीक था या नहीं था। उसके बाद फिर सब ठंडा हो जाएगा और टोक्यो आएगा, उसमें मुझे लगता है फिर 121 के बदले 125 लोग जाएंगे, 100 ऑफिशियल जाएंगे और हम यही 4 साल के बाद कहानी इसी कार्यक्रम पर और अन्य मीडिया के कार्यक्रम पर हम यही कहानी दोहरा रहे होंगे। मोलर
जी बहुत बहुत शुक्रिया, नॉरिस प्रीतम कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने जी मलय साहब कुछ कहना चाहते हैं?
मैं ये कह रहा था कि 118 खिलाड़ी 19 खिलाड़ी जो गए हैं ये लॉटरी का टिकट मिलने के कारण नहीं गए हैं, इन्होंने अपनी जगह वहाँ बनाई है ओलंपिक में, तो 120 जाएं या 125 जाएं खिलाड़ियों को दोष देकर और बच निकलना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ी अपनी मेहनत से गए हैं, कोई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत कर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई एशियाई क्वालिफाइंग में टॉप पर आकर जाने की जगह बना रहा है, ये खिलाड़ियों को कोई थाली में परोस कर नहीं दे दिया गया है ओलंपिक का कोटा, इन्होंने मेहनत की है और मेहनत से गए हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे गए, सवाल ये है कि जाने के बाद वहाँ क्यों नहीं कुछ करामात कर पाए, क्या वो मनोवैज्ञानिक दबाव में थे, क्या वो इतने बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं थे मानसिक रूप से, क्या उनके साथ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए थे, हमने क्या किया, फेडरेशंस ने क्या किया, फेडरेशंस के साथ साथ सरकार ने जो पैसे दिए क्या उस पैसे का सदुपयोग हुआ, पैसे कितने खर्च किए इम्पोर्टेंट नहीं है, किस पर खर्च किए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जी एक कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी नाम बताएं। संदीप पाठक बोल जी, मैं संदीप पाठक बोल रहा हूँ गोपालगंज बिहार से।
संदीप पाठक जी कार्यक्रम में आप शामिल हो चुके हैं, अपनी राय रखिए आप।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए कुछ चीजें जिम्मेदार हैं, मतलब व्यवहारिक स्तर पे हम लोग जो लोग हैं भारत उनके साथ भी, जैसे है क्या कि यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे जो है इन तमाम खेलों को जो बैडमिंटन है, स्क्वैश है, बिलियर्ड्स है, खो खो है, ये तमाम चीजें ग्रामीण स्तर पे लोग जानते भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं होती है, गवर्नमेंट भी कुछ खास ग्रामीण स्तर पर नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी जो मतलब नीरव साहब बोले थे कि ऊपर ऊपर ही जाते हैं पीने वाले और फिर बात वही होती है कि ऐसे ही जीते हैं जीने वाले, तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। और फिर दूसरी चीज एक और भी चीज है इसके लिए कि क्रिकेट जो है इतना हावी होता है कि लोग इन गेमों के बारे में कुछ हद तक जान ही नहीं पाते हैं, और सब तभी जानते हैं जब ओलंपिक गेम होता है तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ मीडिया प्रदर्शन होते हैं, तो कुछ जैसे कल पीवी सिंधु का मैच हुआ तो बहुत सारे लोगों ने टीवी पे देखा, नेशनल ने उसे दिखाया भी, डीडी नेशनल ने, तो बहुत सारे लोगों ने देखा, ऐसे इसका मीडिया प्रदर्शन होता भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों तक ये चीजें सिमट के रह जाती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जाहिद खान है जो फेसबुक पर इसी तरह की बात लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार सरकार के साथ साथ आम जनता भी है, लोग जब तक क्रिकेट के दीवाने होते रहेंगे बाकी खेलों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। टिप्पणी लूंगा, एक श्रोता को और शामिल करूंगा कार्यक्रम में। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं योगेश जी?
सर मैं योगेश भोटी जी एनटीपीसी भरूच गुजरात से बोल रहा हूं।
जी
सर हमारा ये सुझाव ये सवाल है कि हमें जो है हमारी जो कोचिंग जो सिस्टम है हर एक खेल में उसको ट्रेनिंग की जो सिस्टम है वो इवेल्युएट करनी चाहिए, और दूसरी बात की स्वदेशी हमारे कोच के साथ साथ उनको बाहर जाने का, बाहर के जो फॉरेन कोच जो होते हैं विजिटिंग कोच उनका भी एक्सपोजर देना चाहिए। दूसरी बात कि हर एक गेम में हर एक स्पोर्ट्स में 10 जो पहले टॉप प्लेयर्स है उनके साथ मुकाबले का उनको अनुभव देश विदेश में या भारत में मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि जहाँ ओलंपिक का कॉम्पिटिशन होता हो 1 या 2 साल पहले वहाँ भी कंपटीशन में थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना चाहिए। दूसरी बात कि डोपिंग का जो है कि डोपिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस और कौन से केस में डोपिंग होता है ये खिलाड़ियों को अच्छी जानकारी दी जाए, और किसी खिलाड़ी को जानबूझकर बाहर करने के लिए उनके खाने पाने खान पान के साथ छेड़छाड़ या टैम्परिंग नहीं करनी चाहिए जो नरसिंह यादव के साथ हुई है, और जेन्युइनली वो अच्छा कर रहे थे फिर भी उनको 4 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कुछ बातों को थोड़ा देखिए कि अगर इन्होंने जेन्युइनली डेलिबरेटली नहीं किया है तो उनको
मतलब इतना कड़ा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। कई चीज़ें इन्होंने कही कि गरीब को कोई स्पॉट क्यों नहीं करता है। एक हमारे श्रोता हैं राविल मोहम्मद, ये भी यही बात कह रहे हैं।
देखिए भारत में जब 1982 में एशियाई खेल हुए, एशियाई खेलों के बाद साई की जब स्थापना हुई उसमें टैलेंट सर्च प्रोग्राम रखा गया, प्रतिभा की पहचान बचपन में करो, और इस प्रतिभा की पहचान होने के बाद 8 से 12 साल लगते हैं ओलंपिक में पदक जितवाने में। एक ओलंपिक पदक पर इंग्लैंड में 5.5 मिलियन 55 लाख पाउंड खर्च किया जाता है एक पदक के लिए।
तब एक पदक मिलता है।
खिलाड़ी को बचपन में पहचाना जाता है, पहचानने के बाद चूंकि हम निर्धन राष्ट्र हैं, गरीब देश हैं, हम माने न माने, इसलिए जब आप किसी के घर से उसके छोटे बच्चे को ले जाकर खिलाड़ी बनाने की तैयारी में लगाते हैं तो उस गरीब घर की देखभाल भी आपको करनी होती है, वरना वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि बच्चा कब वापस आके CRPF में या BSF में या अर्धसैनिक बल में, सैनिक
रेलवे में,
रेलवे में कहीं कोई छोटी सी नौकरी पा लेगा, घर की रोटी कमा लेगा। अगर उसके घर को भी सपोर्ट दिया जाए जो दिया जाता है, हम अक्सर कहते हैं कि जमाइका है, कीनिया है, ये सब छोटे छोटे देश हैं, वहाँ कैसे खिलाड़ी निकल पाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जमाइका और इथोपिया के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और खान पान उनके देश में नहीं होता, उन्हें बाहर भेजा जाता है, अमेरिका जाते हैं। और भारत में भी सरकार के अलावा निजी जो हमारे
स्पॉन्सर्स
हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं कि बीजिंग ओलंपिक और लंदन ओलंपिक, दोनों ओलंपिक्स के पहले लक्ष्मी नारायण मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट बना था, जिसमें ये कहा गया कि ओलंपिक पदक जीतने की संभावना जिन जिन खिलाड़ियों से है उनको लाकर हम ग्रूम करेंगे और उनके टैलेंट को आप विकास करेंगे, और उनके टैलेंट का विकास किया गया और पदक जीते उन्होंने, ओलंपिक में जीते, कॉमनवेल्थ में जीते, एशियाई खेलों में जीते। और ये भी बता दूं आपको कि जो साक्षी मलिक ने इस बार पदक जीता है इसका भी समर्थन जिंदल स्टील वर्क्स ने किया है, JSW भी ओलंपिक खिलाड़ियों को। तो भारत की जो कॉरपोरेट जगत है उसको भी आगे आना पड़ेगा। और रही बात हमारी और आपकी जिम्मेदारी की, हमारी आपकी बहुत जिम्मेदारी है, मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकता, क्योंकि मीडिया वो दिखाता है जो बिकता है, और बिकता जब लोग कहते हैं क्रिकेट बिकता है, बैडमिंटन नहीं बिकता, आप बताइए कल क्या विश्व कप के फाइनल को देखने वाले लोगों की संख्या से कम लोगों की संख्या थी देखने वालों की? अगर आप दिखाएंगे, अगर लोग जानेंगे कि कबड्डी की भी लीग है, हॉकी की भी लीग है, लोग देखने लगे, और कुश्ती की भी लीग होगी उसको भी देखेंगे, मुक्केबाजी की लीग को भी देखते हैं। मगर हाँ एक बात ज़रूर है कि पूरा देश अगर ये ठान ले, ये प्रण कर ले, क्रिकेट को दोष ना दे, क्रिकेट अगर अच्छा कर रही है, चाहे BCCI में 1000 खामियां हों,
लेकिन
उन्होंने क्रिकेट को अच्छा चलाया,
चमका
है,
दिया।
हालांकि वहां भी भेदभाव है मोहनलाल जी, भारतीय महिला क्रिकेट कहीं आसपास नहीं है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों, वहां भी पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव साफ झलक रहा है।
एक कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताए और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
वीरेंद्र कुमार जाकर बोल रहा हूँ, धारा
जी। वीरेंद्र कुमार जाकर
जी, ये सिंधु साहिब पदक जीता, इनको बहुत बहुत बधाई हो, और भी आगे अच्छा प्रयास किया इन्होंने हमारे वार्ड में, से खेता रहा मैं उनका मैच का पैसा
जी। बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में आप शामिल हो गए। एक चर्चा आपने अभी छेड़ी थी थोड़ी देर पहले और कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो वहाँ पर, जो कि उस वो डॉक्टर हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत तो
रेडियोलॉजिस्ट,
हाँ, रेडियोलॉजिस्ट हैं,
हाँ।
और वो वहाँ पर डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आप भारतीय संघों का ढांचा देखेंगे तो सारे राजनेता उसके प्रमुख बने बैठे हैं। अगर वो प्रमुख बने बैठे हैं तो फिर आप सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट की बात क्यों कर रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, मैंने तो एक सिम्टम की बात की, बीमारी तो वही है कि अगर आपने वहाँ चौधरी बनकर अपनी जगह पकड़ ली, जागीर बना ली अपनी, जगदीश टाइटलर ने जूडो एसोसिएशन को बहुत दिनों तक जागीर बनाए रखा, विजय कुमार मल्होत्रा ने आर्चरी एसोसिएशन को बहुत दिनों तक अपनी जागीर बना के रखा, प्रफुल्ल पटेल ने फुटबॉल को बहुत दिनों तक अपनी जागीर बना कर रखा, नाम गिनाने लगूं तो सारा कार्यक्रम नाम गिनाने में ही निकल जाएगा। मगर अगर आपने अपनी जागीर, और देखिए जहाँ नहीं है राजनेता, जरा उनकी भी बात कर लें एक लाइन में कि बैडमिंटन में राजनेता नहीं है, बैडमिंटन में खिलाड़ी हैं,
तो और आज आप चमक रही हैं,
साइना नेहवाल हो या पीवी सिंधु हैं, चमक रही हैं। और गोपी चंद, जिसको कोई पहचानता नहीं था, जिसके पास कोई कोच नहीं था, जब वो ओलंपिक में गए थे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने के बाद, आज गोपी चंद ने जितने महिलाएं, जितने पुरुष खिलाड़ी बच्चे आपको दे दिए हैं कि अभी एक लंबी कतार है पदक जीतने वालों की। पीवी सिंधु का नाम अब आज जान गए हैं आप, अभी ऐसे ऐसे कई और नाम है जो आप जानेंगे।
एक जम्मू कश्मीर से एक श्रोता शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
मैं जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बोल रहा हूं।
पुंछ से नाम बताइए।
मोहम्मद शफी सर मेरा नाम। जी
जी मोहम्मद शफी साहब, अपनी राय रखें।
हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सर जो हरियाणा की लड़कियां हमारी तरफ से, इनको हजार हाश मुबारकबाद हो। हेलो,
जी हाँ जी हाँ, बात सुन रहे हैं।
उनको हजारों हजारों हाँ उनको मुबारकबाद हो। लेकिन मेरे सर बात मौला जी ये है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ हमारा जो वोट पड़ता है, ये वोट जो ऊपर जाता है ये गलत हो जाता है। इस वोट जो है हमारे देश में पैसा नहीं देता खेल खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों को सही चुनाव नहीं होता, जिसकी वजह से हम रोंदे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का जो था कितना घोटाला हुआ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ का क्रिकेट का एक प्लेयर था जिसको वहाँ पर इन्होंने नहीं रखा। ये हमारे दिल में एक बड़ी एक सदमे की बात है कि उस लड़के ने जो अख्तर रसूल था, उसने क्या किया कि बड़ी मेहनत की, अगर हमारे लड़के को ले रहे थे तो शायद दुनिया में नाम रोशन हो जाता और हमारे में जज्बा पैदा होता और मेहनत करते लड़के और चले जाते
हैं।
ये घोटाला और होता है जिसकी वजह से खिलाड़ियों का कोई कसूर
घोटाला होता है। आप परवेज रसूल की बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। घोटाले बहुत होते हैं, जो जो योग्य उम्मीदवार हैं वो बेचारे छूट जाते हैं।
घोटाले बहुत नहीं होते हैं, घोटाले ही होते हैं घोटाले ही होते हैं। और घोटालों के बावजूद जब आप पदक जीतते हैं तो एक पदक 100 पदक के बराबर होता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं,
नरसिंह यादव का उदाहरण ले लीजिए। नरसिंह यादव का
उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण आपने लिया है। नरसिंह यादव को निर्दोष साबित कराने के लिए मेरे ख्याल से देश के सर्वोच्च कार्यालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन बात चली नहीं क्योंकि जहां रोकने की जरूरत थी वहां नहीं रोका गया। जब ये आरोप लगा कि षड्यंत्र रचा गया है, एक सज्जन ने किसी ने सवाल पूछा था, जरा एक मिनट में मैं उनको समझा देता हूँ। वाडा का एक रूल है 2016 का 10.4, उसमें ये कहता है कि अगर किसी खिलाड़ी को किसी प्रतियोगिता से पहले साजिश रचकर उसको जानबूझकर फंसाया जाता है तो वो अपील कर सकता है कि मुझे साजिश में फंसाया गया, लेकिन ये सिद्ध उसे करना होगा कि उसके खिलाफ साजिश हुई है और उसे एक विटनेस यानी गवाह वहाँ लाकर खड़ा करना होगा। नरसिंह यादव के एक साथ जो वकील थे, जो सारे लोग थे, एसोसिएशन उनके साथ थी, प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाकर अपने यहाँ हौसला बढ़ाया था, सब कुछ था, लेकिन वो विटनेस नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमजोरी थी। दूसरी बात कि जांच इस बात की नहीं होनी चाहिए, जांच इस बात की होनी चाहिए कि नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश क्या रची गई, और रची गई तो किसने रची, और जिसने रची उसको सजा मिलनी चाहिए।
और ये शायद बातें कभी सामने नहीं आई,
ये बातें कभी सामने लीपा पोती हो जाएगी।
लेकिन एक एक व्यक्ति का करियर बर्बाद हो गया,
बर्बाद हो गया, भारत की नाक कटी है।
4 साल अगर आप एक किसी खिलाड़ी पर बैन लगा,
4 साल को हटाकर 3 साल भी कर दें, 2 साल भी कर दें, उनके परिवार वाले जो आंसू बहा रहे थे, या नरसिंह खुद बेहोश हो गए, आपको मालूम है जब ये सूचना आई कल नरसिंह बेहोश हो गए और वही डॉक्टर साहब कॉम्बी फ्लैम वाले वहां थे उनको होश में वापस लाने के लिए।
कुल मिलाकर अगर मैं भारत के प्रदर्शन की कुल मिलाकर बात करूं तो निशानेबाजी में भारत ने सबसे ज्यादा निराश किया। अभिनव बिंद्रा पर हमारी निगाह थी, वो नहीं जीते। मानवजीत सिंह थे, गगन नारंग, बड़े अनुभवी निशानेबाज, ये सब गायब हो गए। मतलब क्या इनके 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 तरीके में कमी थी या फोकस नहीं कर पाए? अब तीरंदाजी में बात आई कि हवा बहुत तेज चल रही थी, ये तो सबके साथ था ना?
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हुनर और कौशल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल तराशना पड़ता है। तराशने के बाद एक बिग मैच टेम्परमेंट होता है, जब आप 2 लाख लोगों के बीच स्टेडियम में खड़े होते हैं और तालियां बजती
चिल्ला रहे हों लोग
और चिल्ला रहे हों लोग और आपको समर्थन दे रहे हों या आपको बू कर रहे हों, दोनों ही स्थिति में अपने नर्व्स को काबू में रखना और उसके बाद दौड़ना या उसके बाद प्रदर्शन करना, इसके लिए उस तरह के एक एनवायरमेंट के प्रति आपकी समझ होनी चाहिए कि आप वहाँ जाकर कुछ कर पा रहे हों। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि निशाना सही ना चले, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज भारत में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ, एक हमारे वरिष्ठ एथलीट हैं जिन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था रोम ओलंपिक में, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, वो भारत के एथलीटों की को इतनी बातें सुना रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा था कि अभिनव बिंद्रा को चौथा स्थान ही मिला है इस बार भी, और ऐसे कई हैं जिनको मिला है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो लोग ओलंपिक में गए 118, वो किसी का कृपा पात्र नहीं थे, किसी के दया के पात्र नहीं थे, उनके हाथ में भीख देकर नहीं भेजा गया था, उन्होंने अपनी जगह अर्जित की थी, वो वहां जाकर क्यों नहीं शीर्ष पर पहुंच पाए, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए।
मैं आखिरी टिप्पणी ले रहा हूं और मुख्य समाचारों का वक्त नहीं रहेगा हमारे पास। आखिरी टिप्पणी ये कि क्या सरकार को अब सोचने की जरूरत है? बधाइयां तो सबने दे दी, अब सोचने की जरूरत है।
सोचने की नहीं, सोचकर उस पर अमल करने की जरूरत है, और अब से लेकर अगले ओलंपिक्स तक अगर आप चाहते हैं कि पदकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो, तो इस समय आपको खेलों को प्राथमिकता सूची में, खिलाड़ियों को सबसे ऊपर, उसके बाद खेलों को रखना होगा।
जी मलय नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी बात रखी। तमाम श्रोताओं को शुक्रिया जो कि कार्यक्रम में शामिल हो पाए, और उन लोगों का जिनका फ़ोन हम शामिल नहीं कर पाए माफ़ी चाहते हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।